अस्सलामुअलैकुम। तफसीर पे जाने से पहले हम आज के सबक का ख़ुलासा देखेंगे। हमारे आज के सबक में बहुत ही ज़्यादा बुनियादी मज़मून जो है वो ख़ानदानी निज़ाम है। आज के सबक में हम जो सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो क्या है कि इस्लाम ने करीब के रिश्तों में निकाह को हराम क्यों रखा, इसकी हिकमत देखेंगे। और साथ ही साथ हमें इसमें वो तमाम ख़वातीन जिनसे किसी मर्द का निकाह हराम है उसकी लिस्ट मिलेगी, जिसमें से कुछ चीज़ें हम हदीस की रोशनी में साथ जोड़ते हुए एक मुकम्मल तौर पे देख सकेंगे कि किस किस औरत के साथ मर्द का निकाह हराम है। दूसरा आज के दर्स का मौजू क्या है कि जिन औरतों से निकाह हलाल है तो उस निकाह की शराइत क्या हैं। यानी इसलिए अहम सबक है कि पूरे दीन इस्लाम के अंदर निकाह की जो अहमियत है आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चंद आयतें हैं देखने में, लेकिन इनसे वाज़ेह तौर पे हमें ये मिलेगा कि किस तरह से अल्लाह सुबहान ताला ने इन आयात के अंदर हम सब के लिए ये सबक रख दिया कि जिस तरह नमाज के कुछ अरकान और कुछ वाजिबात कुछ सुनन हैं, हर चीज़ का एक हिस्सा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बगैर नमाज होती नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बगैर नमाज हो तो जाती है लेकिन उनका अजर कम हो जाता है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके ना होने से गुनाह नहीं होता, इसी तरह से निकाह या शादी भी एक इबादत है। ये जुमला लिख लीजिए आज आपने सबक के शुरू में ही कि निकाह भी एक इबादत है और इबादत की तरह इसका तरीका भी अल्लाह ने बताया। आज के सबक में इंशाल्लाह इस इबादत की अदायगी का तरीक़ाकार हम देखेंगे और जो बुनियादी चार अरकान हैं उसको भी नायतों से हम देखेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ें आज हमने अपने हिसाब से इसमें शुरू कर दी उसको भी देखेंगे। फिर आखिरी मौजू जो आज के सबक का होगा वो ख्वाहिश परस्त लोग क्या चाहते हैं। हम देखेंगे कि जिस माशरे ने निकाह के बंधन को तोड़ा, लिविंग टुगेदर को इतना लीगलाइज कर दिया कि आज लगता है कि कामयाब शादी से पहले कुछ साल दो साल तक लिविंग टुगेदर या फिर कम अज़ कम मंगेतर के साथ इस हद तक क्लोजनेस हो जाए कि जिसके बाद फिर वो बाद में एक अच्छा शोहर साबित हो सके, तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी हकीकत को देखेंगे। तो ये तो था सबक का थीम। पारे को अगर देखिए तो आज हम पांचवा पारा शुरू कर रहे हैं, वल मुहसनात के नाम पे। चौथे पारे की पहली आयत लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून थी। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अल्लाह सुबहान ताला ने लोगों को उम्मत बन के जीने का सबक सिखाया और उस उम्मत के फ़र्द होने के नाते से क्या क्या जिम्मेदारियाँ रखी। आज के पारे का पहला टॉपिक जो है ये घरेलू ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है। तो पारा नंबर पाँच में हम सूरत निसा का काफ़ी हिस्सा पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ख़ानदानी निज़ाम की इस्लाह कैसे हो। इस पूरे पारे को अगर आप एक स्ट्रेच में देखें तो आपको इसके अंदर बहुत रब्त मिलेगा, जो इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ देखते रहेंगे और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करेंगे कि वो हमारे लिए इन सारी चीज़ों का सीखना सिखाना आसान कर दें। चलते हैं तफसीर पे। आयत 23 की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके पीछे, उसको थोड़ा सा खुलासे के तौर पर करते हुए आगे चलूँगी ताकि हम पाँचवें पारे का बाकायदा आगाज़ आज की आयत वल मुहसनात से शुरू कर सके। अल्लाह सुब्हान ताला ने आयत 23 में मुहर्रमात की लिस्ट दे दी और उसमें ख़ास तौर पे इंसान की अक़ल में आने वाले वो तमाम रिश्ते कि जिनके साथ फितरी तौर पे बेतकल्लुब होने को दिल चाहता है। बस आप देखिए कि अगर माँ बेटे का प्यार है तो खाला भांजे का भी प्यार है, फूफी और भतीजे का भी प्यार है। ये वो रिश्ते होते हैं जिसमें लाड करने को दिल करता है, क्योंकि अमूमन इन रिश्तों में इंसान ने उनको अपने हाथों से पलते बढ़ते देखा होता है। और हम में से बहुत सारे इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी बहनों के बच्चे बाज़ दफ़ा हमारे सामने ही पैदा होते हैं और फिर चंद साल गुजरते हैं, वक्त का पता भी नहीं चलता और उनके कद हमारे कद से भी ऊपर चले जाते हैं। जिन रिश्तों को इंसान इतना करीब से जानता हो, बचपन में हर इंसान के अंदर बहुत सारी खामियाँ होती हैं, जैसे एक लजीज से लजीज खाना भी अगर इन बिटवीन चखा जाए तो वो मज़े का नहीं होगा। मैं अक्सर इसमें मिसाल निहारी की देती हूँ कि एंड पे पहुँच के जो उसका टेस्ट बनता है, बीच में हो सकता है किसी को कच्चा आटा लगे, उसका शोरबा किसी को अच्छा भी ना लगे। तो याद रखिए कि इंसानी शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ अदवार आते हैं, बच्चों के बचपन में नाक भी बहते हैं, उनके बाज़ दफ़ा सतर भी खुले हुए होते हैं, मासूमियत होती है। इसी तरह से लड़कियां बाज़ दफ़ा रोती हैं, कहीं कहीं कुछ कभी उनके बालों में जुएं भी पड़ जाती हैं। अब वो रिश्ते जो इतने करीब के रिश्ते हैं, जिनके अंदर एक इंसान का लाड और प्यार चलता था, अब अगर बाद में बड़े होकर उन्हीं के साथ निकाह के बंधन बांध दिए जाते, तो कई और चीज़ें जिसके अंदर हम पीछे देख चुके बड़ी डिटेल से कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि माहौल क्रिएटिव रहे। हमने अपनी पिछली आयत में जो देखा कि कैसे अल्लाह ताला चाहता है कि मर्द सुकून से काम करें, बीवियां घरों में हैं या बाहर हैं, उनको ये फिक्र ना हो कि कहीं महरम रिश्तों में खराबी ना पैदा हो जाए, तो लिहाजा उधर तो रिश्ते हराम कर दिए। यहाँ छोटी सी बात कहूँगी कि हराम तो और भी बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की इस वक्त जो मौजूदा मुसलमानों की सूरत हाल दिखती है, उसमें ये चीज़ तो समझ आती है कि कुछ चीज़ें जो वाज़े तौर पे हराम थी, लोगों ने आज उसको वाज़े तौर पे हलाल कर लिया। लेकिन मुहर्रमात से निकाह या उनसे गलत ताल्लुक़ इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह गैर मारूफ है। मुस्लिम कल्चर में तो बिल्कुल आटे में नमक भी ना कहिए, लेकिन वेस्ट ने इसके ऊपर लोगों को माइल करना शुरू किया। आपको पता है कि इस पर एक पूरी कंपेन चल चुकी है कि भाई और बहन की शादी क्यों हराम है। हराम तो वो कहते ही नहीं है, वो कहते हैं अक्ल से बताओ कि इसमें क्या हरज है। बल्कि जिक्र किया था पिछली आयत की तफसीर में कि इस पर बाकायदा एक शख्स ने अपने अक्लमंद होने का सबूत दिया अपने ज़ोम के मुताबिक, और ये कह दिया कि तुम अपने घर की पली बसी लड़की जिसकी आदतों को तुम जानते हो, उसको छोड़कर बाहर की एक नई औरत को ले आते हो। अक्ल को तो ये बात बहुत लगती है, लेकिन आज के सबक के आखिर में इंशाल्लाह ये बात आप क्लियरली समझ जाएंगे कि एक तरफ शरीयत होती है और दूसरी तरफ शहवत होती है, और हम उसके बीच में अटकते हैं। आज भी जितने लोग शरीयत पे अमल नहीं कर पा रहे, सब कुछ मालूम होने के बावजूद उसकी वजह शहवत है, जो आज के सबक का बुनियादी टॉपिक भी है। तो लिहाजा अल्लाह ने तो इसको मना किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से ये बात हमें मिलती है कि क़यामत के करीब मुहर्रमात में जिना होगा। देखिए, एक तो है बाकायदा निकाह और शादी, वो तो नहीं है, और अभी वेस्ट में भी सच्ची बात है कि वो तो वैसे ही शादी नहीं करते, कहाँ पर मुहर्रमात से करेंगे। लेकिन जिना और उसकी कुरुबात के असरात मौजूद हैं। जब औरतें ख़ास तौर पर माएँ और बहनें जवान जो हैं, वो घरों में और स्विमिंग पूल पे और आप क्या कहूँ कि यानी नाम लेने को दिल नहीं करता, बीचेस पे और इसी तरह से कुछ पब्लिक प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ लोग पानी में जाकर बिल्कुल ही बेचैन हो जाते हैं, तो वहाँ जाकर बिल्कुल अपने सतर से आज़ाद हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे वाक़यात भी आपने भी पढ़े और सुने होंगे कि घरों में फिल्में देखने वाले मर्द, वाकया बहुत ही मतलब तकलीफ देने वाला है कि एक बाप जो घर में अकेला था, और बाप से मुराद कि कोई बड़े खाते पीते घर का वडेरा था या क्या था, अपने मुलाजिम को अपने साथ बिठा के वल्गर चीज़ें दिखाता था, और बाद में वही उसकी बेटी की इज्जत लेने का सबब बन गया। क्योंकि देखिए कि जब भी किसी जगह उबाल आता है तो उसका इजहार भी तो होना चाहिए। तो लिहाजा मैं और आप इस मामले में जो बात कर सकते हैं वो क्या है कि जितना हद तक अपनी बेटियों को अपने घर के अंदर रहते हुए भी बेटों की मौजूदगी में और इवन बाप की मौजूदगी में ढका छुपा के रखिए, क्योंकि शैतान जो है वो बाज दफ़ा इंसान के दिमाग पर इतना पर्दा डाल देता है कि उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ का भी पता नहीं चलता। अब यहाँ अगर आप दोबारा ज़रा पीछे देखिए, अगर आपके पास फोर्थ पारा मौजूद है, तो आप देखिए कि हमारे पास जो लिस्ट थी, आयत 23 ही बेसिकली खोल के उसका लास्ट पोर्शन दिखाना चाहती हूँ आपको, लिस्ट वाला। वैसे तो हमने आखिर में तौबा पे बात की कि तौबा अल्लाह करवाता है इंसान से, पिछली ज़िंदगी के जो गुनाह हैं उनको माफ़ भी करवा देता है, लेकिन जो रिश्तों की लिस्ट थी उसमें आप देखिए कि हमारे पास सबसे आखिर में जो लोग आए थे फूफी खाला के बाद, वो नसब के रिश्ते थे। अगर आप थोड़ा सा इसमें नोट करके देखिए मेरे सामने, इस वक्त फिर 23वीं आयत है, उम्महातुकुम बनातुकुम, नंबर 1 2 करते जाइए, आपको इस एक आयत में से 3 मुख्तलिफ रिश्ते निकलेंगे, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी। उम्महातुकुम नंबर 1, बनातुकुम, अखवातुकुम, अम्मातुकुम, खालातुकुम, व बनातुल अखी, व बनातुल उख्ती, कितने हो गए? 7 रिश्ते। इसको कहते हैं नसब से, यानी हुरमात की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है नसब से, यानी जिसको उर्दू में हम कहते हैं खून के रिश्ते, सगे रिश्ते, 7 है नसब से। इतने हिस्से को अगर आप चाहें ना तो एक रंग से हाईलाइट कर लें अपनी आयत में, बाद में जाके काउंट कीजिएगा। अब आगे चलिए, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم رضائي ماں وأخواتكم من الرضاعتي تمہاری رضائی بہن. اس آیت میں دو رشتے نسب سے بتائے گئے ہیں لیکن حقیقت میں حدیث میں آتا ہے کہ جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں اتنے دودھ سے بھی حرام ہیں. ٹھیک ہے, تو سات ہی رشتے بن جاتے ہیں کون سے, دودھ والے, یعنی دودھ شریک, خالہ, پھپھی سب بھی حرام ہوتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ خود تو ان کی اپنی اولاد نہیں تھی لیکن دوسروں کے بچوں کو لا کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پلواتی جو ان کی بہن تھی, اور اس کے نتیجے میں حضرت عائشہ پھر اس بچے کی کیا بن جاتی, رضائی خالہ بن جاتی. تو یہ عمل اس دور میں بڑا عام تھا اور یہ پسندیدہ عمل ہے. اس سے کم از کم بات والے کئی اور مسائل ختم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ سوشل ٹائز ویک ہو گئی, اپنے بچوں پہ کچھ روپ نہیں ہے تو دوسروں پہ کہاں ہوگا, لیکن اس طرح سے بعض لوگوں کو اسلام نے سیکیور کر دیا. سال ہے کہ آپ کے خاندان کی کوئی ایک اکیلی عورت ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں, کوئی بھی نہیں ہے ان کا محرم, سب ان کے قریب کے چلے گئے. تو اگر اس طرح کے کوئی رشتے قائم کیے ہوں کسی سوسائٹی میں تو عورت کسی بھی سٹیج پہ تنہا نہیں رہتی. ٹھیک ہے, بہرحال آگے دیکھیے کہ اگلے جو رشتے ہیں وہ امہات نسائکم, ادھر آپ چاہیں تو تیسرے رنگ کا ہائی لائٹر لگا لیجئے. تو یہ کون سا رشتہ ہے, ساس, سوتیلی بیٹی, اور اس کی جو ڈیٹیل اور حلائل بہو, یہ ہے سحر سے. پہلے رشتے تھے جن کو نسبی رشتے کہا, دوسرے جو بیچ میں آئے ان کو رضائی رشتے کہیں گے, اور اس کے بعد اب آخری جو آ رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے سحر. سواد ہا رو, گول ہا ہوتی ہے نا, ہا دو منہ والی جس کو ہا کہتے, سواد ہا رو. سحر کہتے ہیں عربی میں سسرال کو, یعنی کسی نہ کہیں کسی کا رشتہ ہے. آپ کا اپنا سسرال ہے یا ماموں کی طرف سے ان کا سسرال تھا تو کچھ اور, یا خالہ, جو بھی رشتے ہوئے تو سسرال کی وجہ سے رشتے جو ہوتے ہیں ان کو سحری رشتے کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ونتج مبین الاختین, دو بہنوں کو جمع کر دینا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ دیکھیے جو اس میں رضاعت کے مسائل آئے تھے اس کو ہمیں زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ. یہ مسائل کچھ تو ہم نے دوسرے پارے میں پڑھے طلاق کے موضوع میں جب بچے کا موضوع آیا تھا, اور باقی ڈیٹیل جتنی ادھر موجود ہیں اس میں یہی ہے کہ ایک بچہ بچپن میں ہی دودھ پی لیتا ہے جب ایک عورت کا رضاعت کی مدت میں, تو رضاعت قائم ہوتی ہے. استثنائی صورتیں ملتی ہیں. ایک صحابی تھے جو ایک صحابیہ کے گھر میں تھے, بچپن میں ان کے گھر میں آئے, پالا ہوا تھا, اب بڑے ہو چکے تھے, اب کیا کیا جائے اس بچے کا, بڑا ہو گیا. آپ سوچیں نا, کسی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ تو بچہ ہی لگے گا اس کو, لیکن اب بڑے ہونے پہ اسلام اپنی ساری پابندیاں مانگتا ہے, وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے, اس کی بیٹیاں سگی نہیں. تو ایک ایسا معاملہ ہوا تھا, مقیت غالباً ان کا نام تھا یا قیس, کچھ اس طرح, میرے نام ذہن میں ہے نہیں ان کا اس وقت, لیکن جب ایسا ایک ایشو اٹھا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو, اس لڑکے کو, ینگ تھا, اب کسی بھی طرح سے, ظاہر ہے کہ جوان بچے کو دودھ تو ہے وہ کسی طرح الگ سے نکال کے کسی برتن میں پلایا جائے گا, تو اس عورت کا یا اس کی بہن کا دودھ پلوا دیں اگر, تو پھر یہ بچہ جو ہے اس ماں کا محرم بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک واقعہ تھا. اب اس کی بیس پہ بعد میں اختلافی باتیں ہیں کہ کیا دو سال کے بعد بھی کوئی بچہ یا بڑے جوان لوگ ہیں ان کو بھی کرا جائے, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر تو اصول ہی ٹوٹ گیا. پھر دو سال کی رضاعت کیا, پھر تو جوان مرد اس وقت بھی کسی عورت کا بیٹا بن جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. ایک آخری سوال کر کے اس میں آگے چلتے ہیں, زنا کی بیٹی اس کا کیا حکم ہے, یا زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا بیٹا کیا یہ محرمات میں ہوتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے کہ تینوں امام اسے کہتے ہیں کہ وہ بھی بیٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اسے نکاح کو حرام کہتے ہیں, امام احمد, امام ابو حنیفہ اور امام مالک. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی بیٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ زنا کے نتیجے میں جو بچی پیدا ہوئی وہ تو زنا کی اولاد ہے. جیسے کہ پیچھے بات کی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں, تو یہ نہیں. تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس طرح کے معاملے پیش آئیں, لیکن جب بھی کبھی ہوں تو پھر اس وقت کے دور میں جو بھی قرآن سنت سے بات کرنے والا ہے اس کو حالات بتا کے اس بارے میں بات کی جائے گی. اب آپ دیکھیں یہ ساری لسٹیں پوری ہوئیں, پانچواں پارا شروع ہوتا ہے والمحصنات, اور کون عورتیں حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس واو کی سمجھ نہیں آتی, ہم المحصنات سے شروع کرتے ہیں کہ حرام کی گئیں, کچھ نہیں پتا. اگر آپ ترتیب ربط نہیں رکھیں گے نا آیتوں کا تو بہت زیادہ غلط تفسیر کریں گے. और बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है कि हम इधर की बातें उधर और उधर की इधर कर दें। तो वल मुहसनात की वाओ का ताल्लुक हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम वाली लिस्ट में है। कोई ऐसा है जिसको ये बात वाजे नहीं हुई? क्लियर है ना? यानी पीछे से लिस्ट थी कि इस औरत से निकाह हराम है, और किससे हराम है? वल मुहसनात मिनन निसा, हर निकाहशुदा औरत से दूसरे मर्द का निकाह हराम है। सूरत के शुरू में हमने पढ़ा कि एक मर्द एक वक्त में मजबूरी या हालात के तकाजे के मुताबिक एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। हद उसकी इस्लाम ने चार कर दी, क्योंकि इस्लाम से पहले नहीं थी। लेकिन औरत एक वक्त में एक ही जगह शादी कर सकती है। तो लिहाजा वो औरत जिसकी तरफ ना कोई मर्द देख सकता है, ना उसके बारे में सोच सकता है, ना उससे कोई मोहब्बत की पींगे बढ़ा सकता है, वो हर वो औरत है जो दूसरे के निकाह में चली गई। कैसे खूबसूरत तरीके से इस्लाम देखिएगा कि इंसान का दिफा करता है। अब यहाँ आप देखिए कि पहले दौर में अनमेरिड अफेयर्स ज़्यादा थे, और उसी पे लोगों की नज़रें उठ जाती थी कि किसी की लड़की का किसी के लड़के से चक्कर है। हीरोइनों के अफेयर्स चलते थे या जो भी था। आज क्या हुआ? उसको कबूल कर लिया, उसको अफेयर नहीं किया, लिविंग टुगेदर कर दिया, ज़रूरत कह दिया, हालात का तकाजा कह दिया। तो जब एक चीज़ गलत को आपने ठीक कहा, तो आपने एक हद खोल दी ना। आज के दौर का पढ़े लिखे और पौश लोगों का जो मसला है ना, वो शादी के बाद के ताल्लुक आता है, इसकी बीवी का उसके साथ और उसकी बीवी का उसके साथ। आप अदाकारों और सियासतदानों के लतीफे तो लोगों से सुनते ही होंगे, लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि हम मुसलमानों में अब बाज जगह आटे में नमक ही होगा लेकिन मौजूद है, कि अब इस हद तक अय्याशी और ताल्लुकात में खुलापन आ गया कि जब कोई पार्टीज होती हैं तो उसमें कुछ शामें, कुछ मौके, कुछ ऐसे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं कि कोई परवाह नहीं किसकी बीवी किसके साथ नाच रही है और डांस कर रही है। अल्लाह कहता है वल मुहसनात मिनन निसा। इस्लाम का हुक्म क्या है कि जब कोई लड़की मांग ली जाए, जिसको आपकी ज़ुबान में मेरी ज़ुबान में मंगनी कहते हैं, तो उसकी तरफ से अब सबकी नज़रें हट जानी चाहिए। हत्ता कि आपको ये पता चल जाए ना कि कोई किसी की तरफ पैगाम डाल रहा है, तो हुक्म यह कि जब तक वो यस या नो ना कर दे, तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन मंगनी के बाद जब निकाह में एक औरत आ जाए, अब चाहे उसके माजी का मंगेतर था जिससे मंगनी छूटी, चाहे कोई कॉलेज स्कूल के दौर का दोस्त था जो शादी करना चाहता था, कट ऑफ। कितनी फिल्मों की ये स्टोरीज होती हैं कि लड़कियों की शादियां माँ बाप कहीं कर देते हैं और बाद में वो पुराना लवर आ जाता है, और फिर बीच में ताल्लुकात होते हैं और वो लड़की उधर से भाग आती है, और माँ बाप की भी नाक डुबोती है और ससुराल का भी नाक डुबोती है। इस्लाम में इसकी कतई इजाज़त नहीं। हर शादीशुदा औरत 100% अपने आप को सिक्योर समझे। लफ्ज़ वल मुहसनात को देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, हा स्वात नून है। हसन कहते हैं अरबी ज़ुबान में किला, फोर्ट्रेस, सिटाडेल। एक बुक भी है मारूफ, सब बोल दें क्या नाम है बुक का, दुआओं की एक बुक का, हिस्नुल मुस्लिम, मुस्लिम का किला। यानी एक मुसलमान जब ये दुआएं पढ़ लेता है तो वो एक किले में आ जाता है। ये वही लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में ये चार मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। लिख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ, और इन चारों में बहुत ही खूबसूरत रब्त भी है। शादी, आज़ादी, पाक दामनी और इस्लाम। यानी वल मुहसनात से मुराद चार किस्म की औरतें हैं। कौन सी औरत? कंवारी औरत के मुकाबले में शादीशुदा औरत, ठीक है? दूसरी कैद यानी लौंडी या बांदी, यानी जो एक कैद औरत है उसके मुकाबले में आजाद औरत। तीसरा मुहसिना का लफ्ज होता है प्योर के मानों में, पाक दामनी के, करप्ट और गंदी औरत के मुकाबले में पाक दामन औरत, अफीफा, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली। और चौथा ये मानी आता है काफिर औरत के मुकाबले में मुसलमान औरत। तो वल मुहसनातु से मुराद क्या हुआ? शादीशुदा औरत, आजाद औरत, पाक दामन औरत, और मुसलमान औरत से निकाह हलाल है। यानी शादीशुदा से नहीं हलाल, बाकी उसके अलावा दूसरों से हलाल है। तो गोया के अल्लाह ताला ने यहाँ पहला मानी इस्तेमाल किया। आप वल मुहसनात के नीचे लिख लीजिए कि यहाँ पहला मुराद है। اگلا اس آیت کا جو ہے وہ ہمیں اس آیت کی شان نزول بتاتا ہے. بس جنگوں میں کافروں کی عورتیں مسلمانوں کی قید میں آتی ہیں, آتی تھیں, آ جاتی تھیں. اب وہ عورت لونڈی بن جاتی تھی, جب لونڈی بن کے صحابہ کو ملتی تھی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جب وہ صحابہ کے اندر بٹتی تھی تو تعلق ان کے لیے جائز تھا, ان کو کسی معاملے میں رکھیں, آگے اس پہ ہم بات کر لیتے. تو بعض لوگ اس پہ کراہت محسوس کرتے تھے کہ ان کے تو پیچھے شوہر بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے یہ کفر پہ آ کے اسلام دشمنی میں آ کے جنگ پہ آ گئیں اور ہارنے کی صورت میں مل گئیں. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ نے آ کے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی وہ عورتیں جو پیچھے سے شادی شدہ تھیں لیکن جنگ کے قیدی ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں, تو کیا ایسی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ ہاں, والمحصنات من النساء, ہاں شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے, لیکن الا ما ملکت ایمانکم, جو لونڈی بنا کر آ گئی. تھوڑا سا پہ لفظ لونڈی کا بھی سمجھ لیجئے گا کیونکہ یہ آیت لمبی اور اس میں بھی ہر حصے کی الگ تفسیر ہے. اب ہم اس وقت جس حصے پہ اس کیا ہے, الا ما ملکت ایمانکم, کہ شادی شدہ عورتوں سے بالکل نکاح جائز نہیں, تعلق جائز نہیں, لیکن ایک ایکسیپشن کیا ہے کہ وہ شادی شدہ عورتیں جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو پھر ان کے لیے ان سے تعلق جائز ہے, اور اس تعلق کے قائم کرنے سے پہلے ایک مہینہ انتظار کیا جائے گا, پیریڈز آ جائیں اس کو, یعنی استبرائے رحم بولتے ہیں اس کو, یہ یقین ہو جائے کہ اس کا پیٹ بچے سے خالی ہے. اور اگر وہ عورت پریگننٹ تھی تو پھر وضع حمل, جو پیچھے بھی مسئلہ آ گیا تھا, تو وضع حمل دونوں صورتوں میں پھر اس کے بعد تعلق جائز ہے. اب اس لفظ کو سنتے ہی بہت سارے لوگ, جس میں سے یقیناً آپ میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آئیے ذرا اب اس موقع پہ ہم چند پوائنٹس کی صورت میں لونڈی اور غلام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ لونڈی کا مسئلہ اسلام سے پہلے کا تھا, جیسے بہت سارے مسائل تھے نا سوسائٹی میں, شراب عام تھی, جوا عام تھا, اور سو آن, جو ہم پیچھے بات کرتے رہتے ہیں. قرآن کے نزول کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا, اور یہ سلسلہ پیچھے سے چل رہا تھا, انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. تین مختلف قسم کے غلام اور لونڈی سے, میں لفظ لونڈی ہی بولوں گی, آپ غلام خود ہی سوچ لیجئے گا کیونکہ اس وقت موضوع لونڈی کا آ رہا ہے. تین قسم سے لوگ غلامی یا لونڈیزم میں آ جاتے تھے. نمبر ایک, جنگوں کے اندر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آ کے لڑتے تھے, دونوں صورتوں میں, ظاہر ہے ایک طرف کفر ہے اسلام ہے, اور بعض دفعہ کفر کی کفر سے بھی لڑائیں ہوتی تھیں, جیسے کہ آپ سن چکے ہیں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں, دونوں کفر پہ تھے. تو اسلام سے پہلے کافر قبیلے جب لڑنے آتے تھے تو بعض دفعہ اپنے ساتھ عورتوں کو اور بچوں کو بھی لے آتے تھے, وجوہات تھیں اس کی, کیوں, بعض دفعہ غیرت دلانے کے لیے مردوں کو, پیچھے آپ کو سنایا تھا غزوہ بدر کے ضمن میں کہ ابو جہل عورتوں کو بھی لے آیا کہ یہ عورتیں ذرا ہمارے لیے گانے گائیں گی, ہمارے جوش اور جذبات کو بھاریں گی, ملی نغمے پڑھیں گی اور ہم جا کے لڑیں گے. اسی طرح بعض دفعہ روٹی پکانا, کھانا پینا, وہاں جنگوں میں جا کے وہیں چولہا چوکا چلتا تھا, کوئی پیچھے سے تو نہیں لاتے تھے, کام کاج کے لیے عورتیں آتی تھیں. تیسری ایک وجہ عورتوں کو ساتھ لانے کی, ان کے ساتھ رقص و سرود کی محفلیں, یعنی محفل موسیقی یا انٹرٹینمنٹ کے لیے لائی جاتی تھی. بعض دفعہ غیرت دلانے کے لیے لائی جاتی تھی کہ ان عورتوں کو دیکھو اور لڑو اپنے مجاہدوں کے جذبوں کو بھارنے کے لیے. تو ایک سے زیادہ وجوہات تھیں, عورتیں آ جاتی تھیں. اب کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوئی, اب آپ امیجینیشن میں لائیں کہ ایک قبیلہ ادھر کھڑا ہے, دوسرا ادھر کھڑا ہے, مرد سامنے آ کے لڑ رہے ہیں, عورتیں اندر جا کے خیموں کے اندر روٹی پکا رہی ہیں, کچھ بھی کر کر آ رہی ہیں. دونوں قبیلوں میں جنگ کی صورت میں جو قبیلہ فتح یاب ہوتا تھا, تو ظاہری بات ہے کہ فتح یاب ہونے والا کانکررز جو تھا, فاتح جو تھا, وہ کیا کرتا تھا, ان کے سارے ہتھیار, کیونکہ دشمن تو بھاگ جاتے تھے. اب جب دشمن جو بھاگے تو تیر تلوار اپنی چیزیں چھوڑ کے گئے, سب پکڑ لیتے تھے لوگ, بچے عورتیں ساری پکڑتے تھے, قیدی جتنے بھاگ نہیں سکتے تھے وہ قید کر لیے جاتے تھے. تو یہ سب کچھ پھر جیتنے والی قوم کا ایسٹ بن جاتے تھے. اتنی بات کلیئر ہے, یہ سب پہلے سے ہو رہا تھا, اسلام نے کوئی رسم نہیں ڈالی. یہ ایک صورت تھی جو جنگوں میں قیدیوں کے آنے کی تھی. بعد میں کفر میں کیا ہوتا تھا, پھر ان کو جا کے جانوروں کی طرح अस्तबलों में डाल देते थे, किसी से टॉर्चर सेल पे डाल देते, कुछ से कुछ करते। कोई इनके हकूक नहीं थे, कोई इनकी सेह नहीं थी। और ये सिलसिला खानदानी नस्ल दर नस्ल चलता आता। फिर दूसरी वजह आप लिखिए, पहली क्या थी, सब बोले मिलके शाबाश, जंगों में कैदी बने। अब कुछ बन गए ना कैदी, उनके नाम के साथ आ गया कि ये कैदी है, ये लॉन्डी है, फिर वो वहीं रहते, आखिर उनके भी घरों में बच्चे होते। तो दूसरी रीजन किसी भी सोसाइटी में लॉन्डीज्म और गुलामिज्म की क्या थी, कि नस्ल दर नस्ल गुलामी, गुलाम का बच्चा गुलाम, लॉन्डी का बच्चा लॉन्डे चलता था। तो लिहाजा नस्लों की नस्लें रहती थी। आपने बरेसगीर पाक इनकी हिस्ट्री में खानदान गुलामा का नाम सुना होगा, वो भी कुछ इसी सिलसिले की चीज थी। ठीक है, तीसरा सिलसिला क्या चलता था कि कोई अगवा कर लेता किसी को, किडनैप्ड किड्स, आज भी हमारे यहाँ मारूफ है कि किसी के बच्चे को पकड़ा और उसके बाद उसको पकड़ कर गुलाम बना दिया, उसको कहीं भी ले गए, कुछ भी कर दिया। तो ये सारी सूरतें पहले से मौजूद थी। अब आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, कुछ नहीं किया 13 साल तक, तो सिर्फ साथी तैयार हुए। टीम तैयार करनी कोई आसान काम नहीं होती। 13 साल तक छेड़ा भी नहीं किसी मौजू को, भाई जब हमारा इसमें कोई काम नहीं, हम कर नहीं सकते तो हम बातें क्यों करें ऐसी से वैसी। लिहाजा जब मदीना में गए, एक एक करके उस सोसाइटी के अंदर अल्लाह ताला के नबी ने इस्लाम की बरकतें रखी, तो उसमें अब एक इशू क्या था कि लौंडी और गुलामों का क्या मामला किया जाए। अब आप सिर्फ अपने ऊपर लें, एक न्यू बॉर्न मुल्क है, अब वहां पे ये इशू है, गुलाम हजारों में बिकते थे, 10-10, 20-20 हज़ार का एक गुलाम था, लोगों के एसेट्स थे। मिसाल आप इस तरह समझिए कि जैसे आज के दौर में लोग बिजनेस करते हैं ना, तो उनके शेयर्स होते हैं, अब शेयर्स की कीमत होती है ना, या किसी का बिजनेस है, फैक्ट्री है, उसमें मशीन है। इस तरह उस दौर के लोगों की इकोनॉमी गुलामों और लौंडियों पे चलती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, आप अपने जहन में रखिए, नंबर एक कानून बनाते हैं, आज से सारे गुलाम और लौंडियाँ आज़ाद। क्या होता भला, आप सोच के बता सकते हैं, सारी मदीना की इकोनॉमी डूब जाती। भाई ये तो ऐसे ही है ना कि गवर्नमेंट रातों रात सब की टेक्सटाइल मिलों को ताला लगा दे कि ख़त्म हो गई ये सब, गवर्नमेंट ने सारी ले ली, नुकसान था ना, लोगों का माल खराब होता। दूसरा इसका नुकसान भला क्या होता कि जो कल तक गुलाम थे लोगों के जहनों में, दिलों में, हर जगह उनका मुकाम था, ओवरनाइट अल्लाह के नबी सारे गुलामों को आज़ाद कर देते, तो क्या सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती? कभी नहीं करती। आज कोई आपको ही कह दे कि मासी जो आपके घर में काम करती है, आज तक उसके साथ बच्ची पीछे आके झाड़ू पोछा करती थी, कल आप उसकी अपने बेटे से शादी कर दें और कल वो आपकी बहू बन जाए, हो सकता है आप कबूल कर लें? आपके घर के आधे लोग करेंगे ही नहीं। इस्लाम ने इसका एक बड़ा खूबसूरत हल निकाला। देखिए, इस्लाम से नफरत ना किया करें, इस्लाम के बारे में कभी बैड सोचे भी ना। जहां लफ्ज़ लॉन्डी आता है लोग इस तरह की बातों पे आ जाते हैं, तो आपका मेरा काम क्या होता है कि हम ऐसा ना करें। इस्लाम ने क्या किया, ग्रेजुअली, इस्लाम का एक बेसिक असूल याद रख लें, ग्रेजुअलिटी, तदरीज, लम्हा लम्हा, आहिस्ता आहिस्ता। और वो क्या किया कि इस्लाम ने ऐसे खूबसूरत रूल्स दिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी वो हदीसें जमा करके पढ़ लीजिए कि जिसमें गुलामों और लौंडियों के हकूक का दिफा किया गया। इतनी रग़बत दिलाई आपने कि गुलाम आज़ाद करने का इतना सवाब है, उसमें से बहुत सारी हदीसों का जो खुलासा बनेगा उसमें क्या है कि आपने फरमाया जिसने एक गुलाम को आज़ाद किया, उसके बाद वो गुलाम सारी ज़िंदगी जो नेकियां करेगा उसका अजर आज़ाद करने वाले को है। मौला कहते हैं उस शख्स को जो किसी गुलाम को आज़ाद करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया, हज़रत उमैया के वो गुलाम थे, सारी ज़िंदगी की बिलाल की अजानों और उनकी नेकियों का सिला किसको मिल गया, हज़रत अबू बकर को मिल गया। ठीक है, हज़रत अबू बकर बहुत बड़े बड़े गुलाम आज़ाद कराते थे, इनके बाप अबू कहाफा थे, कहा करते थे कि तुम इतने गुलाम जो आज़ाद कराते हो तो अब उनमें से कोई ले आओ अपनी खिदमत के लिए, कुछ काम कर दें, पानी भर दें। तो ये कहते थे कि अब्बा मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं इनको आज़ाद कराता, मैं इनको इस्लाम के लिए कराता हूँ। ठीक है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि हर जुमे को एक गुलाम आज़ाद करते थे, और जिस जुमे को नहीं कर सकते थे अगले जुमे से पहले फिर दो करते थे अगले जुमे को, सहाबा को रग़बत दिलाई। आपने फरमाया कि जिसने किसी गुलाम को आज़ाद कराया उसके जिस्म के हर उज्व के बदले अल्लाह उस बंदे को आग से निजात देगा, उसके हाथों के बदले उसके हाथों, उसके कानों के बदले उसके कान, उसकी जुबान, उसकी दिल, कौन ना ये रग़बतें जाने। پہلی وجہ رغبت دلائی، شوق دلایا آپ نے. دوسرا کارنامہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کیا تھا؟ کہ آپ نے ان کے حقوق مقرر کر دیے، جس کو آج کے دور میں آپ ویمن رائٹس کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کہتے ہیں. خاص طور پہ اللہ کے نبی نے غلام اور لونڈیوں کے حقوق مقرر کر دیے، اور اتنا صحابہ کو اس کے بارے میں ڈرایا اور ان کا تذکیہ کیا کہ صحابہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ خود کھجور کھاتے، جو مدینہ میں بازاروں میں اور باغوں میں گری پڑی بھی مل جاتی تھی، لیکن غلاموں کو روٹی کھلاتے تھے. جو آٹا امپورٹڈ آتا تھا باہر سے اور بڑا مہنگا ہوتا تھا، کبھی ونس اوائل وہاں روٹی بنتی تھی، اپنے غلاموں کو یہ کھلاتے تھے. اتنا ڈر گئے صحابہ اس بارے میں. ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے غلام کو گالی دی، ابو ذر کا نام آتا ہے غالباً، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، تو نے جاہلیت کی بات کی. آپ کی روایتوں سے ملتا ہے کہ جس نے اپنے کسی غلام یا لونڈی کو مارا، قیامت کے دن اس معاملے کو سامنے رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا اگر اس ملازم یا اس غلام کی غلطی اور اس کا گناہ چھوٹا تھا اور اس کا تھپڑ بڑا تھا یا اس کا ظلم بڑا تھا، تو اس کو ہی پکڑ ہوگی، برابری ہوگی. صحابہ ڈر کے انہوں نے آزاد کر دیا. یہ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا کام ہوا. تیسرا ایک بنیادی کارنامہ جو اللہ کے نبی کے تھرو اللہ نے کیا، وہ کیا کیا کہ زکوٰۃ کے مال کی مصارف میں ایک مد سمجھتے ہیں، کیٹیگرائز کیا نا کہ زکوٰۃ کا مال کس کو دے سکتے ہو، اس میں ایک کیٹیگری غلاموں کو آزاد کرنا کر دیا. ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انما الصدقات، تو اس لسٹ میں غلاموں کی آزادی تھی. قصہ مختصر، اللہ کے نبی نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو غلام آزاد ہوتے، لونڈیاں آزاد ہوتی، ان کے ساتھ نکاح کو عام کر دیا. تو یہ سارے معاملے پیدا کرنے سے ہوا کیا کہ آپ کو پتا کہ صرف 10 سال مدنی دور، غزوہ تبوک تک غلامی تقریباً ختم ہو چکی تھی. وہ سب غلام کچھ آزاد ہو گئے، مسلمان ہوتے. پھر دوسرا ایک اور بہت ہی فائدہ ہوا کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں وہ غلام تھے، آپ سوچیں نا آج کے نوکر ماسیاں، وہ ان گھر والوں کا سلوک اور ان کی ڈیلنگز اور ان کے معاملات دیکھ کے مسلمان ہو گئے. اور جب وہ مسلمان ہوتے تو بعض دفعہ ان کو ایسی آزاد کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح کافی زیادہ یہ سلسلہ ختم ہوا. آج آپ دیکھیے کہ ہمیں اس وقت دنیا میں غلامی نہیں دکھتی، اسلام کا احسان ہے. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام نے یہ خوبصورت اقدامات کر کے غلامی کو آزاد کرا دیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو شور و غلغلہ ہے لونڈی پہ اور غلام پہ، آپ ذرا جا کے ڈیپتھ میں دیکھیے، ہسٹری پڑھ لیجئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلیک اور وائٹ کی تو آج بھی بانٹ ہے، بس میں یہ بلیک کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ وائٹ کے. آپ پڑھ کے دیکھیں یو ایس اے کی ہسٹری، بلیک اور وائٹ امریکنز میں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اس ہوٹل کے اندر فلانی آ سکتا ہے، ادھر فونی کوئی بیٹھ جائے تو اس بس کی سیٹ کو دھوئیں گے. آج بھی لوگوں نے یہ سب کچھ قبول کیا ہوا ہے. تو اسلام میں یہ بات نہیں تھی. رہ گئی بات، اب یہاں سے غلامی اور اس کی تھوڑی سی بات تو کلیئر ہوئی. اگلا ایشو کہ اب لونڈی بن کے آئی عورت، چلو بھائی غلام آتے تھے، کرتے کیا تھے لوگ، ان کو کام پہ لگا دیتے، وہ کام کرتے، پیسے مالک کو ملتے اور مالک اس کے کھانے پینے کا خرچ کا ذمہ دار ہوتا تھا.